ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे बीच आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी हैं। उषा दीदी जी से हम सभी परिचित हैं। दीदी जी का हम तहे दिल से करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। दीदी जी का परिचय तो आप सबको है ही, जिनकी वाणी में सरस्वती देवी स्वयं विराजमान है, जिनकी वाणी से अनेक आत्माओं को परमात्मा के साथ जोड़ने का कार्य आपने बाल्यकाल से ही किया। ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन के साथ आप बाल्यकाल से जुड़े, शुरू में विदेशों में सेवाएं दिए, भारत में भी मुंबई और हैदराबाद में सेवाएं देते हुए 1992 से आप मुख्यालय मधुबन में आदरणीय दादी जी के नेतृत्व में आपने सेवाएं शुरू की। आपकी विशेष पहचान सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्स की एक नई इन्वेंशन एवं पिछले कुछ सालों से हमारे भारत के महान प्राचीन ग्रंथ रामायण महाभारत को बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों से आपने लोगों को आध्यात्मिक रहस्य को समझाते हुए लोगों को ईश्वरीय संदेश देने का कार्य किया। भारत और विदेशों में भी आपने भ्रमण करके बाबा का जन जन तक संदेश पहुंचाने का कार्य किया है। इसके अलावा टीवी और रेडियो पर भी आपके काफी टॉक्स आते हैं और मुरली का महत्व आप हम उनकी वाणी से रोजाना सुनते हैं। साथ साथ आपने कई किताबें भी लिखी हैं जिनका प्रकाशन मधुबन से हुआ है और किताबों से भी कई आत्माएं लाभान्वित हुई हैं। तो आज दीदी जी हमें व्यर्थ से मुक्त होने की विधि के ऊपर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा के इस सीजन के महावाक्य जब हम सभी ने सुने तो विशेष बाबा का इशारा समय अनुसार यही महसूस होता है कि बाबा चाहते हैं कि अब हर बच्चा बाप समान बन जाए। और बाप समान बनना है तो सबसे बड़ी बात है कि हम व्यर्थ संकल्पों से अपने मन को फ्री करें, क्योंकि समय की रफ्तार और स्वयं के पुरुषार्थ की रफ्तार, जब बाबा कहते हैं इन दोनों चीजों को देखो तो कौन सी तेज आगे बढ़ रही है। समय की रफ्तार ही बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और उतना तीव्र गति से अपना पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। और उसका कारण कहीं न कहीं मन के गति इतनी फास्ट चल रही है समय के साथ, तो उसमें समर्थ ही कम है और व्यर्थ अधिक हो जाता है। सारे दिन की दिनचर्या में भी अगर हम देखें तो ये नहीं कहेंगे कि हाँ भी हमें नेगेटिव संकल्प आते हैं, नेगेटिव से तो बहुत जल्दी मुक्त हो गए हम, लेकिन कहीं न कहीं व्यर्थ और साधारण संकल्प मन में अधिक चलते हैं। और इसीलिए ये सबसे बड़ा विघ्न कहो, अड़चन कहो, जो हमारे पुरुषार्थ में क्रिएट करती है। तो व्यर्थ से मुक्त होने की विधि क्या है, ये तो हम सभी बच्चे जानते हैं कि बाबा ने बहुत सुंदर प्रतिदिन की मुरली का खजाना हम बच्चों को दिया है। और प्रतिदिन की मुरली को जितना हम मनन करते जाते हैं उतना ही महसूस होता कि व्यर्थ से मुक्त होने का ये बहुत सुंदर सहज तरीका है। दुनिया के आत्माओं का व्यर्थ संकल्प चलना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके पास समर्थ संकल्प चलाने के लिए कोई खजाना नहीं है, कोई इनपुट नहीं है। परंतु बाबा हम बच्चों को रोज सुबह सुबह इतनी पावरफुल मुरलियां देते हैं, भले साकार मुरली भी क्यों ना हो, लेकिन साकार मुरली में भी बहुत अच्छी अच्छी नई बातें कुछ न कुछ मिलती ही रहती है। तो इसीलिए जब ऐसी बातें मन के अंदर भर जाती है, उसके ऊपर चिंतन करना आरंभ कर देते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हम ब्राह्मण बच्चों के लिए कि रोज बाबा हमें बहुत सुंदर भोजन, ताकत वाला भोजन खिला देते हैं। दूसरी बात कि जब मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चलता है तो उसका कारण क्या है। व्यर्थ संकल्प से आज कई लोगों का मन परेशान हो जाता है, शिकायत भी करते हैं, क्या करें, मन बहुत भारी है, मन बहुत परेशान है। क्यों परेशान है मालूम नहीं, क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। कई बार हम ये व्यर्थ किस कारण से चल रहा है ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक राजकुमार था और राजकुमार का मन बड़ा परेशान रहता था। तो वो भटक रहा था तो किसी ने उसको कहा कि भाई एक महात्मा बैठे हैं बाहर राज्य की सीमा के बाहर, तुम उसके पास क्यों नहीं चले जाते, शायद वो तेरे मन के परेशानी का हल बता सके तेरे को। वो चले गए वहां पर, देखा तो समाधि अवस्था में महात्मा बैठे थे और उनके चेहरे से बहुत तेज चमक रहा था, चेहरा चमक रहा था और इतना मन जैसे उनका शांत चित्त में हो, ऐसी अवस्था देखी तो उनको लगा काश मेरे मन की अवस्था भी ऐसी हो। थोड़ी देर में महात्मा जी ने जब आंखें खोली और उस राजकुमार को देखा तो कहा, आओ बेटे, बड़ा परेशान लग रहे हो। तो कहा, जरूर इसीलिए तो मैं आया हूं कि आपसे मुझे कोई ना कोई ऐसी बात प्राप्त हो जाए जिससे मैं अपनी मन की परेशानी को दूर कर सकूं। तो उस महात्मा ने कहा कि मैं तुझे बात तो दे दूं, लेकिन उसका अभ्यास तो तुझे ही करना होगा। कहा, करूंगा। तो कहा, ठीक है, मैं तुझे रोज एक बात दूंगा, रोज तुम आना और सारे दिन उसका अभ्यास करके देखना कैसा लगा, दूसरे दिन आकर मुझे सुनाना, फिर मैं तुझे दूसरी बात दूंगा। कहा, ठीक है। तो पहले दिन महात्मा ने उसको कहा कि तेरी मन की परेशानी का कारण एक तो ये है कि तुम हर बार ये सोचते हो कि पता नहीं दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, दूसरा मेरे विषय में क्या कहते होंगे, किसी को बात करते देखता है तेरे मन में आता है पता नहीं मेरी बात तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मेरा कोई विषय लेकर के तो नहीं बात कर रहे हैं, और वही चीज तुम्हारे मन को परेशान कर रही है, व्यर्थ क्रिएट कर रही है। इसीलिए आज तुम सारा दिन इसी बात का अभ्यास करो, कोई कुछ भी बात कर रहे हो ये सोचो ही नहीं कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये पहली बात जो है, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या बात कर रहा होगा, वो क्या कह रहा होगा, और उसी बात को लेकर के हम परेशान हो जाते हैं। सच कहूं, आप दूसरों के बारे में कितना सोच पाते हैं? आप कहेंगे टाइम ही नहीं है हमारे पास दूसरों के विषय में सोचने का। तो सोचो, दूसरों के पास कितना टाइम होगा? किसी के पास किसी के लिए सोचने के लिए टाइम ही नहीं है, सच पूछो तो। क्योंकि हर एक अपनी उलझन में इतने फंसे हुए हैं, हर एक अपने प्रॉब्लम से इतने परेशान है, उनके पास टाइम कहाँ है दूसरे के बारे में सोचने का। इसलिए आज से ये बात दिल से निकाल दो, मन से निकाल दो कि पता नहीं फलाना मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। हर एक अपने ही उदड़ बूंद, जिसको कहा जाए, उसमें फंसे हुए हैं। हर एक अपने ही काम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, इतना टाइम नहीं है। तो आपके बारे में सोच करके उसको क्या मिलना है? अगर इस बात का हम भी अभ्यास करना शुरू कर दे कि कोई मेरे लिए कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, अगर कोई बात कर रहे हो सकता है उनकी अपनी आपस में कोई बात चल रही हो, ये बात मन के अंदर से निकाल दो कि कोई आपके बारे में बात कर रहा है, तो आप इतने सुखी हो जाएंगे, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, मन की परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी। वो राजकुमार भी जब गया, लोग बात भी कर रहे थे, वो जा रहा था, लेकिन उसने ये बात इतनी मन से पक्की कर ली, कोई मेरे बारे में बात नहीं कर रहा है, हर एक अपने ही प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, हो सके तो मैं उनको कुछ मदद कर लूं, लेकिन मेरे बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मन प्रसन्न रहने लगेगा, प्रफुल्लित रहेगा, और मन के अंदर पॉजिटिव विचार आना स्वाभाविक हो जाएगा। जब तक उन बातों को पकड़ के रखेंगे, मन मुक्त नहीं हो सकता है व्यर्थ से। जब राजकुमार ने देखा कि बहुत अच्छा दिन गया, हल्का रहा, दूसरे दिन वो फिर गया महात्मा के पास कि सचमुच आपने मेरे मन को हल्का कर दिया, कल सारा दिन मैंने ये सोचा ही नहीं कि कोई मेरे बारे में कुछ बात कर रहे, और मैं बहुत प्रसन्न रहा, खुश रहा। आज दूसरी बात तो महात्मा ने उसको दूसरी बात दी जो हम पर भी लागू होती है, और वो दूसरी बात थी कि कई बार हम ये सोचते हैं कि ये काम तो कर रहे हैं लेकिन असफल हो गए, तो कहीं सफलता नहीं मिली, तो अगर असफल हो गए तो क्या होगा, कहीं लोगों का हंसी का पात्र नहीं बन जाऊं मैं, कि देखो करने गया और सफलता तो मिली नहीं। सफलता नहीं मिली, ये ऐसी कोई चीज ही नहीं है। अगर कोई कार्य में असफल हो गए तो उसमें भी कल्याण है। क्या कल्याण समाया हुआ है असफल होने में? क्या कल्याण है? क्योंकि वही सफलता की पहली सीढ़ी है। सफल होने के लिए कई बातें सीखना पड़ता है, अनुभवी होना पड़ता है, तब जाके सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। तो अगर असफल हुए तो उसमें कुछ न कुछ सीखना ही मिला, तो कुछ न कुछ सीखने को मिला तो असफल कहां हुए? सफल ही हुए ना, सीखे तभी एक कदम और आगे बढ़ा सकेंगे, तभी और कदम आगे बढ़ते जाएंगे और सफलता की मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो असफलता नाम की कोई चीज ही नहीं है, और दूसरा मैंने बहुत सुंदर कहीं पढ़ा कि जो व्यक्ति अगर बार बार सफल ही होता रहे, हर काम में सफल ही होता रहे, उसको कहीं ना कहीं अहंकार आना स्वाभाविक है। लेकिन असफलता हमें नम्र बनना सिखाता है, असफलता हमें निर्माणता सिखाता है, असफलता हमें हमेशा बैलेंस में रहना सिखाता है। कितनी सुंदर बात है कि असफलता में सबसे बड़ी सफलता यही है कि मुझे अहंकार नहीं आया, विनम्रता मेरा जीवन का आधार बन गया। अहंकार आने से कई बार हम आगे बढ़ते नहीं हैं, अहंकार आते ही क्या होता है, कदम पीछे होते हैं। बाबा भी बार बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे देह अभिमान को छोड़ो। तो यह सफलता तो हमें और ही निर्माण बनाती है और ही हमें बाबा की याद दिलाती है और ही हमें और अच्छे से पुरुषार्थ करने के लिए कोई ना कोई विधि बताती है या अंदर जैसे स्पार्क हो जाता है कि ये नहीं किया इसीलिए ऐसा हुआ, एनालाइज कराती है, बैलेंस में रहना सिखाती है। तो असफलता कहाँ हुई, ये भी तो सफलता का ही अंग है ना। अभिमान ये अज्ञान है, अहंकार ये अज्ञान है, ये और ही नीचे गिराता है। लेकिन असफलता अगर मुझे निर्माण बनाता है तो गिरने का कोई कारण ही नहीं बनता है। कितनी सुंदर बात उस महात्मा ने उसको सिखाई कि असफलता नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसीलिए हमेशा प्रयत्नशील रहो, पुरुषार्थ करते रहो, असफल हुए उसमें भी कुछ सीखने का मिला है और निर्माण रहने की भावना जागृत होती है तो कभी भी अहंकार के ऊंचाई पर चढ़ करके गिरने का अवसर नहीं बनेगा। बहुत सुंदर सीख लेकर के राजकुमार गया, सारा दिन उसने इसी बात का अभ्यास किया कि कुछ भी हो जाए, अगर कोई कार्य में असफल भी हुआ तो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई कल्याण समाया हुआ है, उसमें भी मुझे सीखने को ही मिला है। तो हमारे जीवन में भी, ब्राह्मण जीवन में भी, इस बात को हम बहुत अच्छे से अभ्यास में ले आए कि असफलता नाम की कोई चीज ही नहीं है मेरे जीवन में, ये हमें निर्माण बनाती है। और बाबा तो कहते हैं नम्र बनो, निर्माण बनो, बैलेंस में रहो, तो कितना सहज ये आधार है। जहां अभिमान आया वहां अपमान की फीलिंग भी जल्दी आएगी, और अपमान की फीलिंग आएगी तो क्या होगा, व्यर्थ चलना शुरू हो जाएगा, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो अभिमान तो और ही व्यर्थ को क्रिएट करने वाला है। तो असफलता कहीं न कहीं हमारे व्यर्थ से हमें मुक्त रखती है, समर्थ सोचने के लिए आगे द्वार खोलती है कि शायद ये तरीका करके अपना लें, उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो जैसे दूसरे द्वार खुलते हैं तो व्यर्थ चलने का मार्जिन नहीं, समर्थ सोच करके आगे या बाबा की याद के साथ, बाबा को हर वक्त याद करते हुए, बाबा कराने वाला है, करण करावनार बाबा है, ये सोच करके आगे बढ़ना सहज हो जाता है। तो असफलता असफलता है ही नहीं। दूसरे दिन भी जब राजकुमार बहुत हल्का रहा, वो तीसरे दिन आता है और कहता है महात्मा से, आपने तो बहुत सुंदर मेरे मन को जैसे 50% हल्का कर दिया, पहले दिन का भी बहुत अच्छा रहा और दूसरे दिन का और अच्छा रहा, मेरे में हिम्मत आ गई, मैं अच्छे करने के लिए जो डरता था वो डर मेरा निकल गया, वो भय मेरा जो मुझे सताता था कहीं असफल न हो जाओ, लोग बात न करें, लोग ये न कहें कि देखो राजकुमार होकर के असफल हो गए, बोले इस भय से भी मैं मुक्त हो गया। आवश्यकता है हमें भी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूक्ष्म भय सताता है और वही सूक्ष्म भय हमारे अंदर व्यर्थ को क्रिएट करने के निमित्त बनता है। इसलिए उस सूक्ष्म भय से भी अपने आप को मुक्त करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात जो महात्मा ने राजकुमार को दी, वो उसने दिया कि अपने समय का सदुपयोग करते जाओ। जब समय का सदुपयोग नहीं करते तब व्यर्थ चलता है और मन परेशान होता है। इसलिए आवश्यकता है तुम अपने मन को समय को सदुपयोग करो। जितना तुम समय का सदुपयोग करते जाएंगे, समय अच्छी तरह से यूज करेंगे, तो देखो वही समय तुम्हें आगे बढ़ाएगा। समय को व्यर्थ गंवाते हैं तो समय भी आपके जीवन को व्यर्थ कर देता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। किसी ने बहुत सुंदर ये कहा है, इफ यू प्रोटेक्ट लॉ विल प्रोटेक्ट यू, इफ यू ब्रेक लॉ विल ब्रेक यू। कोई भी नियम मर्यादा को जब हम तोड़ते हैं तो वो टूटा हुआ नियम मर्यादा हमें एक न एक दिन तोड़ देंगे अंदर से। इसी तरह समय को जिसने सफल किया, समय उसको आगे से आगे बढ़ाता जाता है। कहा जाता है जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। इसीलिए व्यर्थ संकल्प क्यों चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं। और खास करके जब से ये छोटा खिलौना मनुष्य के हाथ में आ गया है, तब से लेकर क्या होता है, हम कहते हैं कि जैसे पहले लोग गुटखा खाते थे ना, तो ऐसे ऐसे करते रहते थे। अब ये डिजिटल गुटखा है, फोन पर, ये डिजिटल गुटखा नहीं कहेंगे इसको। तो डिजिटल गुटखा जब से चलता है तो समय व्यर्थ जा रहा है, समय आबाद हो रहा है। और इसीलिए अगर समय को व्यर्थ किया, समय को बर्बाद किया, तो समय एक न एक दिन हमें बर्बाद कर ही देती है। इसलिए आवश्यकता है कि हम समय को बर्बाद न करें, लेकिन समय का सदुपयोग करें। जितना समय का सदुपयोग करते जाएंगे उतना हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि समय का सदुपयोग करने के लिए भी समर्थ सोचना आवश्यक है। और बाबा ने तो हम बच्चों को दिनचर्या के अंदर बहुत ऐसे होमवर्क दिए हुए हैं, जिस होमवर्क को अगर करते जाए तो समय सदुपयोग होता ही रहेगा, व्यर्थ जा ही नहीं सकता है। तो उस दिन राजकुमार ने बहुत अच्छे से सारा दिन समय का सदुपयोग किया, और जितना उसका समय का सदुपयोग हुआ, माना उसके इंद्रियों का भी सदुपयोग हुआ, उतना वो खुश रहा। अच्छे कर्म उसने किए। अच्छे कर्म करने पर हमें खुशी प्राप्त होती है। अच्छे सोचने में, शुभ भावना शुभ कामना जितनी हमारी बढ़ती है उतना हमें खुशी होती है। तो इसीलिए तीसरा दिन भी राजकुमार का बहुत अच्छा गया, समय को सफल किया। और जैसे उसको कुछ प्राप्ति हो गई हो, कुछ प्राप्त हुआ हो, ऐसी फीलिंग आई। समय का सदुपयोग करना, बाबा ने भी हम बच्चों को यही सिखाया है कि बच्चे हर क्षण हमारी सफल होती रहे, हर क्षण हमें अच्छे से अच्छा करते जाना है, सर्व के प्रति शुभ कर्म करते जाना है, तो उससे हमारे जीवन के अंदर खुशी प्राप्त होगी, दुआएं प्राप्त होगी और हमें अंदर से हल्का रखेगा। तो इसलिए समय का सदुपयोग करना। चौथे दिन आया, और जब राजकुमार ने महात्मा जी को कहा कि आपने जैसे 75% मेरी सारी परेशानी दूर कर दी, कल अच्छा कर्म करके मुझे बहुत अच्छा लगा, समय जितना मैंने सदुपयोग किया उतना मैं हल्का रहा, व्यर्थ चला ही नहीं मेरा, ये करूं ऐसा करूं ऐसा करूं, एक एक काम जैसे जैसे मैं करता गया वैसे हमें खुशी मिलती गई। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे सेवा करते चलो, मनसा वाचा कर्मणा, जितना तुम अपने आप को बिजी रखेंगे सेवा में, श्रेष्ठ कर्म होता जाएगा, दुआएं इकट्ठी होती जाएंगी, पुण्य इकट्ठा होता जाएगा और जमा का खाता भरपूर होता जाएगा। और चौथी बात फिर उसने कहा, महत्वपूर्ण बात आज तुमको मैं सिखाता हूं, जिसके ऊपर भी तुम्हें बहुत ध्यान देना होगा, नहीं तो तेरी मन की परेशानी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। और वो चौथी बात जो दिया महात्मा ने वो यही दिया कि तुम जो है अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करो। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे एक दूसरे से, हर आत्मा यूनिक है इस ड्रामा के अंदर, हर आत्मा की विशेषता अपनी अपनी है, तुम अपने आप को दूसरों से भेंट नहीं करो, ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, ये ऐसे कर रहे हैं इसलिए मैं भी मैं उसके जैसे नहीं बन सकती हूं, क्योंकि मेरी विशेषता अलग है, उसकी विशेषता अलग है। बाबा ने हर एक आत्मा को जब कहते हैं विशेष आत्मा है, क्यों विशेष कहते हैं, क्योंकि हर एक में कोई न कोई विशेषता बाबा ने वरदान के रूप में भरी हुई है। ये ब्राह्मण जीवन है, वरदानी जीवन, और इसीलिए जब बाबा ने कोई न कोई विशेषता वरदान के रूप में हर एक में दिया है तो मैं उसके जैसे कैसे बन सकती हूं। उसका रोल अपना है, मेरा रोल अपना है, मैं अपने रोल को बहुत अच्छे से बजाऊं, मैं उसके साथ अगर बार बार कंपेयर करती रहूंगी तो या तो मेरे जीवन में डिप्रेशन आएगा कि देखो ये तो इतना अच्छा कर रही है मैं नहीं कर पा रही हूं, अरे हम उससे भी आगे जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। तो बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम्हें अपने आप में रहना, यू आर अ यूनिक पर्सन, ड्रामा में भगवान भी हमारे जैसा दूसरा नहीं बना सका, इतने यूनिक है हम, ये पूरे 84 जन्म में हमारा एक भी जन्म सेम नहीं रहा, एक जैसा नहीं रहा। तो जब हमारा एक जन्म एक जैसा नहीं है, जबकि मेरे तो संस्कार पूर्व जन्म के, तो भी मैं पूर्व जन्म जैसी नहीं रही हूं, अलग हूं। करोड़ों आत्माएं हैं, भले लोग कहते हैं दुनिया के अंदर आपके जैसे 7 लोग होते हैं, लेकिन संस्कार तो फिर भी भिन्न है, चेहरा भी एक जैसा नहीं आता है, थोड़ा बहुत तो अंतर होगा ही, संस्कारों में अलग अंतर है, समय का प्रभाव है, इसलिए हर कोई भिन्न है। तो जब भगवान भी मेरे जैसा दूसरा कोई बना नहीं सका तो मैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर क्यों करूं, करना ही है तो कल बाबा की संडे की अव्यक्त मुरली में पढ़ रही थी तो बाबा ने यही कहा है, सी फादर फॉलो फादर, सी फादर फॉलो फादर, मैं ब्रदर सिस्टर को क्यों देखूं, क्यों अपने आप को कंपेयर करूं कि उसके जैसे बनूं, उसके जैसे बनूं, उसके जैसे। हमें बनना है बाप समान, हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, हमें किसी के जैसा बनना ही नहीं है। कई बार कई कन्याएं आकर के मुझे कहते, दीदी हमें आपके जैसा बनना है, मैंने कहा मेरे से मेरे से आगे जाओ, यही मेरी भावना है, मेरे जैसे तो बन नहीं सकेंगे आप, यही कहना पड़ता है। अरे बाबा ने कहा है कोई दो व्यक्ति भी एक जैसा नहीं है, पूरे 5000 साल में कोई मेरे जैसा है ही नहीं। सत्युग के फीचर्स अलग है इसलिए वहां तो कोई हो ही नहीं सकता, त्रेता के भी फीचर्स अलग है इसलिए वहां भी कोई नहीं हो सकता, द्वापर के अंदर भी नहीं हो सकता है, वहां भी रजो प्रधान अवस्था, कलयुग के अंदर भी जब मेरे जैसा कोई भी नहीं है तो ये आई एम यूनिक, ये नशा रहे। हम बाबा के बच्चे, हर एक यूनिक है और हर एक बाबा का चुना हुआ विशेष रत्न है, कोई ना कोई विशेषता संपन्न है। तो दूसरों से कंपेयर करके हम अपनी स्थिति को डाउन क्यों करें? अरे ये इतना कर रहे, मैं तो इतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रही हूं। हो सकता आप सेवा आगे कर रहे हो, वो पुरुषार्थ में अगर आगे हैं तो आप सेवा में आगे हो, आप किसी न किसी में आगे होगा ही, ऐसे हो ही नहीं सकता है कि आप आगे है ही नहीं, वही आगे है। नहीं, मुझे याद आता है दादी जानकी जब मधुबन में रहने लगे तो कई बार क्लास कराती थी, मैं प्रकाशमणि दादी जैसे नहीं बन सकती हूँ। दादी हमेशा यही कहती थी, मैं प्रकाशमणि दादी जैसे नहीं बन सकती हूँ, लेकिन मैं जो हूँ वो मैं हूँ। और दादी जानकी अपने आप में यूनिक लगती थी, उन्होंने कभी पुरुषार्थ नहीं किया कि मैं प्रकाशमणि दादी जैसे बनूं, नहीं, वो कहती मैं जो हूँ उसी में मैं बहुत अच्छी हूँ। और दादी की विशेषता अपनी थी तो जानकी दादी की विशेषता अपनी थी, दोनों अपनी विशेषता से बहुत खूबसूरत थे, तो हम सभी भी अपनी विशेषता से बहुत खूबसूरत है। हमें दूसरों के साथ कंपेयर करने की जरूरत है क्या? है ही नहीं। फिर महात्मा ने उस राजकुमार को कहा कि देखो एक पतेले के अंदर पानी लेके आओ। वो पानी लेके आया और कहा कि देखो ये पानी का स्वरूप क्या है? तो कहा पानी का स्वरूप तो है ही नहीं भाई, इसका आकार क्या है? तो कहा इसका आकार है ही नहीं, जिस पात्र में डाला वही आकार है उसका। कहा अभी लोटे में डालो, लोटे में डाला, कहा अब उसका आकार? तो कहा भी पात्र के हिसाब से फिर उसने अपना आकार बदल दिया। तो इसी तरह महात्मा ने कहा तुम्हारी चित्त वृत्ति का भी कोई आकार नहीं है, तुम जैसा पात्र में डालोगे वैसा आकार ले लेगा। अगर तुमने व्यर्थ के पात्र में डाला तो तुम्हारी चित्त वृत्ति हमेशा व्यर्थ ही चलती रहेगी, अगर तुमने समर्थ पात्र में डाला तो तुम्हारी चित्त वृत्तियां वैसा ही स्वरूप धारण कर लेगी और तुम समर्थ संकल्प करने लगोगे। तो हमें ये देखना है कि हमने अपनी चित्त वृत्ति के लिए कौन सा पात्र चुना है, क्योंकि जितना व्यर्थ हम सोचते जाएंगे उतना हमारी मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन होती जाएगी, उतनी हमारी आंतरिक शक्ति क्षीण होती जाएगी। इसलिए आवश्यकता है कि हम व्यर्थ के पात्र में उसको न डालें, शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प के पात्र में उसको डालें, फिर देखो इस जीवन का मजा ही कुछ और हो जाता है। ब्राह्मण जीवन में हमारी शिकायत समाप्त हो जाती है, व्यर्थ चलता है, व्यर्थ चलता है, व्यर्थ इसलिए चलता है क्योंकि या तो हमने वही पात्र लिया है या हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तो खुद में हीनता की भावना आने की संभावना है। खुद में जब हीनता की भावना आएगी तो जरूर है कि वो हीनता की भावना समर्थ संकल्प तो क्रिएट नहीं करेगी। आप ये सोचो, भगवान ने उसको ये विशेषता दी है, बाबा ने मुझे कौन सी विशेषता दी है। अपनी विशेषता को देख करके उसको कार्य में लगाना शुरू करें। जितना उसको कार्य में लगाते जाएंगे उतना आपकी विशेषता निखरने लगेगी, चमकने लगेगी और आपको भी यूनिक बना देंगी। लोग आपका भी उदाहरण देंगे कि देखो कितना सुंदर जीवन बनाया, पहले कुछ नहीं थे, अरे बाबा ने ऐसे ऐसे पत्थरों को खाली उठाया, उसको हीरा बना दिया, निखार निखार करके बाबा ने विशेषता भर भर के हमें निखारा है। बस हमें उस विशेषता का प्रयोग करते जाना है। जितना ज्यादा उसका प्रयोग करते जाएंगे उतना निखार बढ़ता जाएगा। तो अपने जीवन को यूनिक बनाओ, किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं, हिम्मतहीन होने की आवश्यकता नहीं, अपने अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हुए निखरते जाओ और देखो एक न एक दिन आप भी ऐसे हीरे बन जाएंगे जो बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाओगे। तो इसीलिए किसी के साथ मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं। ये चार बातें जैसे ही राजकुमार ने अपने जीवन के अंदर धारण किया, बहुत हल्का हो गया। अनेक प्रकार की जो परेशानी के कारण मन उसका उदास रहता था, मन व्यर्थ सोचता था, उन सब बातों से फ्री हो गया। जीवन में हमें भी कहीं न कहीं इस व्यर्थ से अपने आप को मुक्त करना बहुत जरूरी है। बाबा ने हमें इतना अच्छा ज्ञान का खजाना और उसमें भी विशेष जो खजाना दिया है, ड्रामा का खजाना दिया है कि बच्चे ये ड्रामा हो बहू रिपीट होता है। इस ड्रामा में आप यूनिक एक्टर हो। ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। ड्रामा में अकल्याण करने की ताकत किसी के पास नहीं है जो आपका कल्याण कर सके। हर बात में कल्याण समाया हुआ है, तो फिर व्यर्थ चलाने की जरूरत है क्या? व्यर्थ तभी चलता है जब ड्रामा का ज्ञान भूल जाता है और ये सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ड्रामा में मेरा ही पार्ट बाबा ने ऐसा क्यों बनाया है। तो जो आगे पार्ट है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने व्यर्थ सोचना चालू कर दिया कि ड्रामा में मेरा पार्ट। जब अपने पार्ट को हमने स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा, कौन स्वीकार करेगा? आपका पार्ट आपको ही स्वीकार करना पड़ेगा। और जब आप स्वीकार करके चलेंगे, उसमें आप श्रेष्ठता को भर देंगे, बाबा का श्रीमत रूपी हाथ को पकड़ लेंगे, तो क्या होगा, पार्ट श्रेष्ठ नजर आने लगेगा। तभी कहा बाबा ने तो एक एक पत्थर को ही चुना था, उसको हीरा बनाया ना, तो कैसे बनाया? उसके लिए मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होगा कि मुझे अपने आप को उसी पार्ट के साथ एक्सेप्ट करना है और बाबा ने जो विशेषता मेरे अंदर भरी है उसी के आधार से मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है। तो व्यर्थ चलना, बिजी हो जाओ। जितना बिजी हो जाएंगे श्रेष्ठ कर्म करने में तो व्यर्थ के लिए मार्जिन ही नहीं रहेगी। व्यर्थ उनको चलता है जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य नहीं तो टाइम वेस्ट करता रहता है, या तो उसका लक्ष्य हर बार परिवर्तन होता रहता है। कई बार हम छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पूछते हैं ऐसे ही, क्या बनेगा बड़ा होकर क्या बनेगा? तो कई बार हमने देखा एक दो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपना लक्ष्य फिक्स नहीं है। कभी कहता है मैं ना पायलट बने। एक छोटा बच्चे को मैंने पूछा तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो कहा मैं है ना बड़ा होके पायलट बनूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर थोड़े दिन के बाद वो एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, तो मैंने उसको पूछा तुम क्या बनेगा? कहा मैं पायलट नहीं बनूंगा। अभी क्या बनेगा, मैं ये बनूंगा। फिर उस थोड़े दिन के बाद पूछा, उसका फिर लक्ष्य बदल गया। फिर तो व्यर्थ तभी चलता है जब हमारे सामने भी हमारा लक्ष्य स्पष्ट न हो। हमारा लक्ष्य घड़ी घड़ी बदलता रहता है, और इसलिए जैसे ही लक्ष्य बदलता रहता है तो व्यर्थ तो चलेगा कि नहीं चलेगा। लक्ष्य एकदम क्लियर हो, फोकस एकदम क्लियर हो, तो फिर आपका व्यर्थ चलेगा नहीं। इसलिए आवश्यकता है कि एक तो पात्र सही ले लो अपनी चित्तवृत्ति के लिए, और दूसरा लक्ष्य स्पष्ट रखो। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, उसको पूरा करने में आप जितना लग जाएंगे, उतना व्यर्थ की मार्जिन नहीं होगी। तीसरी बात जो बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, तीन बातों को छोड़ो और तीन बातों को धारण करो। तीन बातें छोड़नी कौन सी है, जो व्यर्थ को ज्यादा क्रिएट करने वाली है? एक है परचिंतन, परदर्शन और परमत का प्रभाव। ये तीन चीजें व्यर्थ क्रिएट करने के बीज है, इसलिए इन तीन चीजों से अपने आप को मुक्त करना है। स्वचिंतन, स्वदर्शन और श्रीमत का प्रभाव हमारे ऊपर रहे। तो तीन चीजों से मुक्त हो जाओ, तीन चीजें ग्रहण कर लो, तो व्यर्थ से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। जब हम दूसरों को देखना आरंभ कर देते हैं तो व्यर्थ तो चलेगा ही। दूसरों का चिंतन करना शुरू करेंगे तो व्यर्थ तो चलेगा ही, है ना? इसलिए आज तक भी लोग मंत्रा का उदाहरण देते रहते हैं, पर चिंतन और परदर्शन के लिए और पर मत के प्रभाव के लिए कैकेयी का उदाहरण देते रहते हैं कि कैसे अपना सब कुछ गंवा देते हैं जब इन तीन बातों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत के प्रभाव में आ गया। तो स्वचिंतन के लिए बाबा ने हम बच्चों को कितने स्वमान दिए, रोज अपने आप को स्वमान में स्थित करते जाए, उस स्वरूप में अपने आप को देखना आरंभ करे, स्वदर्शन करते जाए और श्री मत का ही प्रभाव हमारे ऊपर रहे, श्री मत का हाथ पकड़ करके चलते रहे, तो बाबा के हाथ में हाथ दे करके चलने में ही जो फायदे हैं, जो प्राप्ति है, वो और किसी में नहीं है। तो व्यर्थ चलने की मार्जिन नहीं। और एक बात के व्यर्थ चलता है, माना मन कमजोर है। अब मन कमजोर क्यों हुआ है? जितना व्यर्थ चलेगा तो मन तो कमजोर होता जाएगा, और कमजोर मन फिर और ज्यादा व्यर्थ सोचता है। तो मन को शक्तिशाली बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जैसे दुनिया में भी लोग अगर फिजिकली वीक है तो क्या करते, एक्सरसाइज करते हैं, है ना, ड्रिल करते हैं। तो बाबा ने भी हम बच्चों को कहा कि बच्चे जब आपका मन व्यर्थ से कमजोर हो जाए तो ड्रिल ही एकमात्र है जो हमें शक्तिशाली बनाएंगे, हमारे मन को सशक्त बनाएंगे। तो ड्रिल कौन सी करनी है? तो कई ड्रिल बाबा ने हमें बताई है। एक है साकारी आकारी निराकारी, इसमें आना जाना करो, ये ड्रिल करो, ये एक्सरसाइज। दूसरा बाबा ने कहा पांच स्वरूप का अभ्यास करो, और ये ड्रिल भी कितनी बार करो, कम से कम आठ बार तो करो, ये स्वदर्शन चक्र घुमाओ। तीसरा बाबा ने कहा अच्छा और कुछ नहीं हो, चार धाम की यात्रा करो, मधुबन के चार धाम की यात्रा में घूमते रहो। ये भी जब बुद्धि घूमती है चार धाम के अंदर तो भी आत्मा में समर्थी आने लगती है, शक्ति आने लगती है। तो इस तरह की जो ड्रिल है, बाबा ने जो जो ड्रिल हमें बताई हुई है वो ड्रिल जैसे जैसे हम करते जाएंगे, है ना, जैसे ऊपर चार धाम है, शांतिवन में भी चार धाम बन गए, प्रकाश स्तंभ है, अव्यक्त लोक है, शक्ति स्तंभ है और रत्न स्तंभ है, ये चारों धाम यहाँ भी बने हुए हैं ना, ये चारों दादियों की ऊर्जा वहां भी समाई हुई है। जब संस्कार वहां हुआ तो वहां उसकी ऊर्जा तो है ही है, तो इसीलिए यहाँ के चार धाम में भी घूमो, ऊपर के चार धाम में घूमो तो भी कितने शक्तिशाली बन जाएंगे, ये ड्रिल करते जाओ। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय जो ड्रिल कराते हैं, एक सेकंड में कह करके बाबा हम बच्चों को कहते हैं अशरीरी हो जाओ, और अशरीरी बन करके बस परम धाम में छत्ता लगाए ना, तो परम धाम के छत्ते में जाकर के बैठ जाओ, कितना अच्छा लगता है, चारों ओर जैसे लाइट ही लाइट चमक रही है और उस छत्ते के बीच में हम अपने आप को, हमारा विजुअलाइजेशन इतना सुंदर और क्रिएटिव हो कि जब भी हम वो ड्रिल करें तो हमें वहां से निकलने को मन ना हो, महसूस हो के जैसे उस छत्ते में चले जाए, बार बार उस छत्ते में चले जाए, जो आज बाबा ने मुरली में कहा। और ऐसे जैसे उस मनार में चले जाते हैं तो चारों ओर जैसे लाइट के सुंदर जुगनू की तरह चमकने वाले हैं, ऐसे जब अपने आप को देखते हैं तो भी बाबा कहते हैं ये ड्रिल आपको शक्तिशाली बनाएगी। कभी अशरीरी की ड्रिल करो, कभी फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करो, कभी कौन सी ड्रिल करो, कभी कौन सी ड्रिल करो, और इस तरह से अपने मन को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जितना मन कमजोर उतना क्या होगा, व्यर्थ ज्यादा चलेगा। तो इसलिए ड्रिल में अपने आप को बिजी करो, जब भी बैठे हो ड्रिल में चले जाओ, ड्रिल करके आओ। हेल्थ कॉन्शियस तो दुनिया में भी लोग बहुत हैं, कम से कम स्पिरिचुअल हेल्थ कॉन्शियस हम बन जाए, और फिर देखो कि कैसे हम एक सेकंड में सचमुच उस अवस्था तक पहुंचे, एक सेकंड, तभी सब एक सेकंड में ड्रिल करे, एक सेकंड में अशरीरी होकर के परमधाम के उस छत्ते में जाकर के बैठ जाए।